صلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رهبر كامل کتاب میں سے آج ہم نیا باب شروع کریں گے، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ کی حیثیت میں، چوتھا باب ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے تقریباً 1/3 سے زیادہ بک پڑھ لی، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ بک کیسے ختم ہو رہی ہے جلدی سے. تو لیکن یہ کہ یہ باب بھی بہت اہم ہے، اور اس کا خاص طور پہ ہم سب کو اس نظر سے بھی فائدہ ہوگا کہ ہم جب کچھ سنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں یا خاندان کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر بعد میں وہ ہم پہ غصہ کرتے ہیں تو پھر کیا کریں. تو یعنی تبلیغ، مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، بلغ یبلغ سے مبلغ، تو تبلیغ کرنے والا. تو یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان مبلغ ہے، اور ہر ایک اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے. خاص طور میں جب ہم خود دین سیکھنے لگتے ہیں تو پھر شروع میں تو ہمیں یعنی بہت ہی دل چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنی باتیں، تو اس راستے میں کیا تکلیفیں آتی ہیں. تو ایک بڑے لائٹ سے وے میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 90 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور خدمت آپ کے ذمے لگا دی گئی، جسے عرف عام میں نبوت کہتے ہیں، مگر ہم اسے تبلیغ کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ جو تمام انبیاء کی خوبیوں کے جامع اور عہدہ نبوت و رسالت کے خاتم تھے. خاتم کہتے ہیں مہر بند، جیسے مہر لگانے والا. ختم کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہاں مراد کہے کہ مہر سٹیمپڈ کے معنوں میں، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ جلیلہ سے وہ سبق نہیں لے سکتے، یعنی بہت بڑا عہدہ جو آپ کو ملا، جلیل جلا اللہ جل ہو شانو کہتے ہیں، اسی کی طرح سے یہ لفظ ہے. مگر ہم آپ کے اس عہدہ جلیلہ سے وہ سبق نہیں لے سکتے جو آپ کی زندگی سے بحیثیت ایک مبلغ ہونے کے لے سکتے ہیں. ہر نبی مبلغ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، مگر ہر مبلغ نبی نہیں ہوتا. اور خاص طور میں آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ نبوت تو ہے ہی نہیں، تو تبلیغ ہی کرنی ہم سب نے. اسی معنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر تمام انبیاء میں ممتاز اور سب نبیوں کے سردار تھے، اسی طرح ایک مبلغ ہونے کی حیثیت میں تمام دنیا کے مبلغوں پر چار کھوں لیکچرروں اور خطیبوں کے رہنما تھے. یعنی اسی طرح ایک مبلغ ہونے کی حیثیت میں تمام دنیا کے مبلغوں پر پرچارکوں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پرچار کرنے والے. تمام دنیا کے مبلغوں، پرچار کرنے والوں، لیکچراروں اور خطیبوں کے رہنما تھے، اور انہیں صحیح طور پر تبلیغ پر چار لیکچر، تقریر اور خطبہ دینے کی تعلیم سکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا. یعنی آپ کو تبلیغ کے لیے مبعوث کیا گیا. پرچار کرنا ہوتا ہے جیسے پبلسٹی کرنا، آج کے دور میں مارکیٹنگ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے. تو اس ساری تمہید کا مطلب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کہ آج ہم اگر یہ بات اس نظر سے دیکھیں کہ آپ نے نبی ہونے کے ناطے یہ کام کیا، نبی ہونے کے ناطے یہ کیا، تو پھر یہ بات ہمارے لیے قابل عمل نہیں لگتی کہ اچھا وہ تو پھر نبی تھے. لیکن ہم میں سے ہر ایک دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اور مبلغ تبلیغ کس سے ہے؟ بلغہ سے، ابلاغ، پہنچا دینا. ہم سب پہ اس چیز کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ بلغو انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہو. تو جو بھی بات ہم سنتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں عام کرنا ہے. تو اسی لیے ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ دیکھیں گے کہ آپ نے دین کی بات کیسے پہنچائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا حکم، ارشاد الہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سورت مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے یہ. اے رسول، اللہ کی طرف سے جو تم پر نازل ہوا ہے اس کی اشاعت اور تبلیغ کرو. اشاعت کیا ہوتا ہے؟ نمایاں کرنا. نشر و اشاعت کا لفظ ہم سنتے ہیں، یعنی کسی چیز کو پھیلا دینا. گویا نبوت کے ساتھ ہی فریضہ تبلیغ کو بھی منظم کر دیا گیا، یعنی ضم کر دیا گیا، ملا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے کسی حکم کی تبلیغ نہ کی اور اسے دوسروں تک نہ پہنچایا تو گویا تم نے حق کے رسالت ادا نہ کیا اور فرائض نبوت میں کوتاہی کی. الفاظ قرآنی یہ ہیں: فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سورة المائدہ آیت 67. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کو تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا. یہاں یاد رکھیے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سے براہ راست خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ کے نبی کو خطاب کر کے قوم کو بھی اس میں شامل کیا گیا. پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح سے مخاطب کیا ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس میں خطاب بالکل آپ ہی سے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. دوسرا ایک طریقہ کیا ہے؟ کہا آپ کو گیا لیکن مراد اس سے قوم ہے، یعنی ایسی باتیں جس میں عموماً تھوڑی سرزنش کی جاتی ہے، آپ ایسا کرنے والے ہیں، اگر آپ دوسروں کی طرف جھک جائیں گے، یہود و نصارہ کیا باتیں نہ مانے. اب یہ اللہ کے نبی کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا. لیکن ایک تیسرا طریقہ ہے آپ کو خطاب کرنے کا، کہ جس میں آپ کو خطاب کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی امت کو بھی خطاب کیا. تو یہ آیت انہی آیتوں میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا امت کے ہر انسان کا فریضہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو حکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بنایا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد بشر کو مبلغ قرار دیا اور فرمایا: بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو کچھ سنو اس کی تبلیغ کرتے رہو. حجت الوداع میں آپ نے فرمایا: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاحِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہیں وہ ان احباب کو جو یہاں نہیں آ سکے میرے پیغامات پہنچا دیں. یعنی جو یہاں حاضر ہیں وہ ان احباب کو جو یہاں نہیں آ سکے میرے پیغامات پہنچا دیں. الغرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں، تمام شعبوں اور تمام شاخوں میں سے تبلیغی حیثیت ہی کو ترجیح دی اور تبلیغ پر سب سے زیادہ زور دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ یہ کام امت کے کرنے کا بھی ہے اور ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایک خاوند بھی تھے، یعنی ہسبینڈ، ایک باپ بھی تھے اور ایک امام بھی تھے، ایک حاکم بھی تھے، مگر سب کی سب حیثیتیں اور صفتیں تبلیغی حیثیت کے تابع تھیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے تو محض اس لیے کہ دنیا کے سامنے ایک بہترین شوہر ہونے کا اسوہ پیش کر سکیں، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام یا حاکم تھے تو صرف اس لیے کہ دنیا کے سامنے صحیح امامت اور حکومت کا نقشہ پیش کر سکیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول اور پیغامبر بنایا تھا، اس لیے آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، زندگی کی ہر راہ میں، عمل کے ہر شعبے میں مبلغ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و فکر تبلیغ تھا، یعنی آپ کو ایک ہی فکر تھی کہ میں نے بات کیسے پہنچانی ہے. آپ کی عبادت و ریاضت تبلیغ تھی. کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی عبادت کے وقت میں بھی تبلیغ کرتے تھے، اور ریاضت یعنی جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز کو تبلیغ کرتے تھے. اس بات کو سن کے مجھے تو بڑی تسکین ملتی ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ اپنے سے یہی شکوہ رہتا ہے کہ انفرادی عبادت کا وقت نہیں ملتا، یا جن لمحوں میں انسان کچھ عبادت کر سکے اس وقت بھی میرے سامنے میری کتابیں ہوتی ہیں اور میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ میں پڑھ لوں تاکہ میں دوسروں کو پڑھا سکوں، اور بعد میں پھر اس کا بوجھ بھی آتا ہے اپنے دل پہ लेकिन यहाँ से क्या पता चलता है कि ये काम भी सारे फिर इंसान के इबादत बन जाते हैं। इसी तरह आप देखिए, आपका जिक्र व फिक्र यानी जिक्र के वक्त में भी आप दूसरों को बात करते हैं। हम जब किसी को बुराई से रोकते हैं तो असल में हम उस वक्त जिक्र ही कर रहे होते हैं। जिक्र क्या होता है? याद, अल्लाह की याद। एक या क्या बैठ के कहते रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी कहना है। वक्त और मौका देखा जाएगा। जब तन्हा हो तो जिक्र करें जुबान से, लेकिन जब दूसरों में हो तो बैठ के तस्बीह पढ़ने की बजाय अल्लाह की बातें करें। सबसे बेहतरीन जिक्र ही क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों को अल्लाह की तौहीद सिखा दो। अकेले में बैठे हो तो अल्लाह से बैठ के वादे पुख्ता करते रहो कि अल्लाह तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। लेकिन जूं ही दूसरों में आओ तो फिर अकेले करने की बजाय दूसरों को इसमें शामिल कर लो। आपकी इबादत और रियाजत तबलीग थी, आपकी सिपागिरी और किश्वर कुशाई तबलीग थी। सिपागिरी और किश्वर कुशाई क्या है? कि फौज में जाना, सिपाही बनना, इसी से सिपाही है ना। यानी आपकी लड़ाई जो है, जो भी आपके मामलात थे, किश्वर कुशाई कहते हैं मुल्कों को खोलना यानी मुल्क फतह करना। किश्वर मुल्क को कहते हैं, कुशाई खोलना, जैसे रोजा कुशाई करवाते हैं आप में से कुछ लोग, ये वही चीज है। आप सल्लम तबलीग का पैकर थे, अल्लाह हमें भी बना दे। सरापाए तबलीग थे आप, मुबल्लिग पैदा हुए, मुबल्लिग बनकर जिए और तबलीग की राह में जान निसार हो गए। तो क्या पता चला, हमने भी अपने दिल को यही तड़प लगानी है कि हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। अब देखिए, जिसको जिससे मोहब्बत होती है, आपको कहना नहीं पड़ता, आप हर वक्त उसकी बातें खुद ही करते रहते हैं, दूसरों को माइल करते रहते हैं उसकी तरफ। अगर हम सबको अल्लाह ताला से मोहब्बत हो गई तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम उसकी बात को उसके बंदों तक ना करें। फिर हम इंतज़ार नहीं करते कि कोई दूसरा हमें ये जिम्मेदारी दे, फिर हम लोगों को रब के पैगाम की तरफ बुलाएं। कोई कहे तो करें, या इसलिए करें कि हमने बताना है कि हमने किया, ना किया तो शर्मिंदगी होगी। नहीं, ये दिल को लगती हैं बातें, तो सोते जागते उठते बैठते हर वक्त इंसान की जुबान पे उसका नाम रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी हम सब के सामने खुली किताब की तरह है कि कैसे आपने अपने मामले में इस चीज़ को हमारे सामने रखा कि गम एक ही लगा लो कि लोग दीन पे क्यों नहीं आते। और आपकी इस कैफियत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान भी किया है। अब आपका हज्जतुल विदा पर खिताब, यानी ये एक चीज़ हमारे सामने है कि कैसे आपने आखिरी हज तो था। यहाँ आप याद रखिए कि हज्जतुल विदा नबी सल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हज है और पहला भी। हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद फिर आप कुछ ही अरसा जिंदा रहे। पूरी ज़िंदगी मक्का और मदीना के करीब रहने के बावजूद एक हज किया। हम में से अक्सर लोग आज हज तो हर साल करना चाहते हैं, लेकिन जिस रब के नाम का हज करते हैं उसकी बात करना, सुनना, सुनाना, जो मौके हर वक्त हमें मौजूद होते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर आपका वो खिताब यहाँ रखा जा रहा है, उसमें से कुछ बातें। आपने अपनी तबलीगी हैसियत के इम्तियाज़ को खुद ही इस कदर वाज़े कर दिया है कि अब हमें इसके मुतल्लिक कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं रही। क्योंकि आपने हज्जतुल विदा के दिन जब 1,44,000 के मजमे में आखिरी तकरीर फरमाई, तो तकरीर के बाद हाजरीन से पूछा, व अंतुम तुसअलून अन्नी फमा अंतुम काइलून। ए हाजरीन, कल क़यामत के दिन तुमसे मेरे मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, तुम क्या जवाब दोगे? ये किस सवाल की बात है? सूरत अनाम में एक आयत हम पढ़ भी चुके हैं, कहीं कई क्लासेस में ये चीज़ आती है कि जिसमें ये आता है कि जिस दिन हम उनको भी पूछेंगे जिनकी तरफ भेजे गए और उनको भी पूछेंगे जो भेजे गए, यानी उन दोनों को पूछेंगे। तो ये यहाँ उस पूछ का जिक्र है। कौमों से क्या पूछा जाएगा? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? और नबियों से क्या पूछा जाएगा? कि क्या तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? तो अल्लाह के नबी सल्लम अब इस जवाबदही के एहसास से बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं कि मेरे बारे में मेरी कौम क्या कहेगी। तो सहाबा से सवाल करते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? इसी वक्त हाजरीन ने वो जवाब दिया जो आपकी पोजीशन और हैसियत को वाज़ह कर रहा है। चुनाचे हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि सबने बयक वक कहा, नशहदु अन्नका कद बल्लगता व अदईता व नसहता। अल्लाह के नबी, हम शहादत देते हैं कि आपने हक़ तबलीग खूब अदा फरमाया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। एक दाई दीन के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि लोग उसके उस काम की गवाहियां दे दें। दुनिया में भी लोग गवाहियां देते हैं, लेकिन जब कियामत के दिन ये गवाहियां चली जाएं और रब के सामने उनको शर्फ़े कबूलियत मिल जाए, तो शायद इससे बड़ी कोई कामयाबी किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती। कितनी तस्कीन मिली होगी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुन के। और मैं इस चीज़ को पर्सनली भी महसूस करती हूँ कि जब इंसान अपने आप को अल्लाह के दीन के साथ जोड़ता है, तो सबसे बड़ी खुशी उसके लिए ज़िंदगी की वही होती है जब कोई ये कहता है कि मैंने आपकी बात को सुन के ये अमल शुरू किया। यानी मैं अपने आप को कुछ भी यानी इस काबिल नहीं समझती कि हम ये बात करें कि हमने कोई अल्लाह के दीन का की दावत दी या हक दी, लेकिन इसके बावजूद भी जब कभी कोई मिलता है कहीं, और कभी जैसे मुझे याद है कि मैं किसी एक सिटी में गई, तो बहुत साल पहले गई फिर दोबारा गई, तो जब स्पीच ख़त्म हुई तो उसमें से एक खातून आई तो मुझे कहने लगी कि आप आज से 3-4 साल जो भी थे उससे पहले आई थी, आपने एक बात ये कही थी और उसके बाद से मैंने उस बात पे अमल करना शुरू कर दिया। यकीन करें कि मेरे लिए वो लम्हे जैसे मेंटली स्टक होने के होते हैं। वाकई आपको यकीन है, आपने वाकई मेरी बात सुन के आपके दिल में आया। फिर जो दिल में नदामत और शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी होती है अल्लाह के लिए कि अल्लाह तेरी शान है कि तू किसी के दिल में ये बात डाल दे, वरना हम तो खुद बात करके भूल जाते हैं। इस तरह कई दफ़ा होता है तो मुझे बहुत ही उस चीज़ से तस्कीन भी मिलती है, और बाज़ दफ़ा किसी का एक बोला हुआ जुमला इंसान को आगे काम करने के काबिल कर देता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है मैं जो काम करता हूँ उसका फ़ायदा तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा और ज़रूरत भी नहीं है और क्या करना और छोड़ो कुछ और करते हैं और बस ठीक है। कभी कभी इंसान इस तरह महसूस करता है ना, लेकिन किसी का एक बोला हुआ जुमला वाकई किसी दफ़ा एक नए सिरे से स्ट्रेंथ दे देता है कि चलो किसी एक को तो फ़ायदा हो रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ज़रा सोचिए, इंसानों में से बेहतरीन इंसान, उम्मत मोहम्मदिया के बेहतरीन लोग, और एक नहीं लाखों के अतबार से क्या कह रहे हैं कि नशहदु अन्नक कद बल्लगता व अदैता व नसहता। मुझे ये अरबी के लफ्ज़ इतने प्यारे लगते हैं सहाबा कराम के, आप इसका लुत्फ़ अगर लेना चाहें तो इसके लफ्ज़ों पर गौर करें। हाँ बेशक आपने पहुंचा दिया और आपने अदा कर दिया और आपने खैर ख्वाही की। उर्दू तर्जमे में वो बात नहीं बन रही जो इसमें नसहता, नासिह किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह, यानी आपने हमारी खैर ख्वाही की। यानी वो जान गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खैर ख्वाह हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ लोग इस खैर ख्वाही को नहीं समझते और ये कहते हैं कि आप तो बस हर वक्त ही कहते रहते हैं, आप तो बस हमारे दुश्मन हैं, आपको और कोई काम नहीं, आप क्यों इस तरह इतनी बातें करते हैं। तो सहाबे कराम ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लम के दिल पे ठंडक उतरी होगी इन लफ्ज़ों को सुन के। इस पर आपने अपनी अंगुश्ते शहादत, अंगुश्त कहते हैं उंगली को, इसी से लफ्ज़ शायद उंगली भी है, ये जो हमारे यहाँ उंगली, तो अंगुश जो है अलिफ नून जीम गाफ जो ये तो इकट्ठा है, फिर शीन और ता आगे थोड़ा सा अलग है। तो आपने अपनी अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाई और फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह सुन ले, ए अल्लाह गवाह रहे, ए अल्लाह देख ले। तीन मुख्तलिफ तर्जमे हैं अशहद के, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, गवाही सुनी सुन के भी दी जाती है, उसके लिए देखने की भी बात होती है और बोलने की भी बात होती है। ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं जो यहाँ नकल हुए। ये लोग मेरे हक़ के रिसालत और नबूवत की अदायगी के मुतल्लिक किस कदर वाज अल्फाज में तस्दीक कर रहे हैं। इस वाक़े से ये साफ़ तौर पर वाज हो रहा है कि आपकी हकीकी ज़िम्मेदाराना हैसियत सिर्फ़ एक ही थी, जो तबलीगी हैसियत थी, बाकी जिस कदर हैसियतें थीं वो सब इसके ताबे थीं। बात वाज़ है ना, यानी आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम देने के लिए मबूस किए गए, बाकी काम भी पैगाम देने ही का एक ज़रिया था। आपके मामलात, आपके बीवियों के साथ ताल्लुकात, आपके अपनी उम्मत के साथ मामलात, असल में हर चीज़ ऐसे थी कि जैसे दूसरे आपको देख रहे हैं और आप वो काम कहीं करके बताते हैं, कहीं बोल के बताते हैं, कहीं कोई बात कर वासे करते हैं किसी भी तरह से। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी का ये मिशन था, इसी को मिशन कहते हैं ना। तबलीग सिर्फ उलमा का काम नहीं, मगर अफसोस कि आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को भूले हुए हैं, तबलीग के नाम से नावाकिफ हो रहे हैं। हमने ये समझ रखा है कि तबलीग सिर्फ आलिमों और मौलवियों ही का काम है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हम में से अपने अपने इल्म के मुताबिक हर शख्स को تبلیغ کا حق حاصل ہے اور ہر شخص کو تبلیغ کا حکم ملا ہے. یعنی یہاں ایک چیز میں واضح کروں گی, بار بار لفظ تبلیغ آ رہا ہے, تو یاد رکھیے کہ تبلیغ کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنے نام کے ساتھ نہ یہ لگائیں آپ تبلیغ کر نہیں سکتے. بعض اپنے آپ کو تبلیغی کا لفظ جب تک نہ اپنے ساتھ لگائیں وہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا. یہاں میں وضاحت کروں گی کہ تبلیغ کی اتنی اہمیت سنتے پڑھتے بولتے وقت کہیں ہمارے ذہن اس چیز کی طرف نہ چل جائیں کہ انسان سارے دین کو صرف تبلیغ ہی کا دین بنا دے, کیونکہ ہمارے ہاں دین کے معاملے میں کچھ کمیاں بیشیاں ہوئیں, افراط اور تفریط ہوا. جس کو دین کا جو رخ اچھا لگا وہ اسی پہ چل پڑا. کسی کو جہاد اچھا لگا تو اس نے کہا کہ صرف دین ہے ہی جہاد کرنے کا نام, باقی ابھی کام چھوڑو, کیوں ابھی تو ہم جہاد کریں گے, چلے. انہوں نے ہر چیز ہر بات کو جہاد پہ لے گئے. کسی کو سیاست کا رخ اچھا لگا تو انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ نہیں, پہلے سیاست میں جاؤ, پہلے یعنی ملکی سطح پہ دین کی بات کرو, پھر بات بنے گی. اور آپ دیکھیں کہ ان کی ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوتا ہے, سیاست, یہ بھی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف عبادت کا ان کا رخ واضح کر دیتے ہیں اور اس کے نام پہ تصوف اور اللہ سے محبت اور وجد اور ایسی چیزوں کو لے آتے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کو جمع کریں, جا جہاد ہو. اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں سارا دین ہی تبلیغ ہے, گھروں کو چھوڑو, بچوں کو چھوڑو, بیویوں کو چھوڑو اور تبلیغ کرو. کیوں کہ ابھی تو ہم اس دور میں ہیں. اور مجھے کسی نے ایسی کسی سے سنی ہوئی بات کہی کہ کسی ایسے صاحب سے جو اس بات پہ مصر تھے کہ ہمیں صرف تبلیغ کرنی چاہیے اور باقی کام نہیں کرنے چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ باقی چیزوں کی طرف بھی تو آپ بات کریں نا, جو بھی ہیں, جیسے کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جس کو یعنی عمل کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی ہم اپنے مکی دور میں ہیں, مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ کی تھی تو ہم صرف تبلیغ ہی کریں گے. تو اس پہ پھر کافی مکالمہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا اچھا پھر مکی دور میں تو پھر ابھی تو شراب بھی حرام نہیں ہوئی, پھر وہ بھی پیجئے اور اس طرح کے کام. تو یہ ساری افراط اور تفریط کیوں پڑی کہ ہم نے دین کی اصل نکال دی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ آپ جب کھانا پکاتے ہیں, ایک سالن جو آپ کے گھر میں بنتا ہے اس کا ٹیسٹ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہر چیز کا ایک تناسب ہے. آپ نمک بھی ڈالتے ہوں گے, مرچ بھی ڈالتے ہیں, گوشت بھی ڈالتے ہیں, پانی بھی ڈالتے ہیں اور سب کچھ ڈالتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز اگر آپ کو اچھی لگے تو کیا آپ صرف وہ کھا سکتے ہیں؟ کسی کو نمک اچھا لگتا ہے, کیا آپ صرف نمک کو سالن کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو گوشت اچھا لگتا ہے, کیا خالی گوشت کھا سکتے ہیں؟ کسی کو آپ دیکھیں مرچی اچھی لگتی ہے, خالی مرچی کھا سکتا ہے؟ ساری چیزوں کا بہترین امتزاج جو ہے وہ خوبصورت کھانا بناتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے, دین وہ دین ہے جس کو امتزاج خوبصورت رکھا جائے, جس کا ہر چیز کو اس کی جگہ دیں. تبلیغ کا ایک اپنا حق ہے, جہاد کا ایک اپنا خانہ ہے, عبادات کا ایک اپنا خانہ ہے, معاملات کا ایک اپنا خانہ ہے. ہم افراط اور تفریط میں پڑھ کے بعض دفعہ ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو صرف کسی ایک کام کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں, یہ درست رویہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ تبلیغ کے لیے کوئی اپنے آپ کو کسی ایک الگ کونوں میں کر لینے کا نام نہیں, آپ چلتے پھرتے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں بھی. اسی لیے اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے جو آپ کو فائدہ دے گا, کہ تبلیغ صرف تحریر اور تقریر سے نہیں, عمل سے بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ کے دین کی بات انسان صرف تقریریں کر کے ہی آگے نہیں پہنچاتا یا لکھ کے ہی نہیں دیتا, عمل بھی انسان کا بہترین اس چیز کی گواہی دیتا ہے. تبلیغ دین صرف تحریر اور تقریر سے ہی نہیں ہوا کرتی, بلکہ تبلیغ عمل سے بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں, آپ کے اخلاق شائستہ ہوں, آپ کا کردار بہترین ہو, تو یقیناً اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں بس یہی ایک راز تھا کہ آپ خود پیکرے عمل تھے, بہترین اخلاق کے حامل تھے. اگر آپ اپنے اخلاق اور اعمال کو درست کر لیں گے تو یقیناً آپ ایک اعلیٰ صفت مبلغ بن سکتے ہیں. آپ نے زبان سے بھی تبلیغ فرمائی مگر عمل سے اس سے بھی پھڑ کر تبلیغ فرمائی. عمل تبلیغ کا خاموش ذریعہ ہے. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, وہ ادیب تھا. اس نے آپ کے سامنے مقفہ و مسجہ, مقفہ کہتے ہیں کافی ردیف لگی ہوئی جیسے شعری وزن میں بات کرنا, اور مسجہ سجی ہوئی یعنی بڑی نپی تلی بات کی, جیسے عموماً لوگ بڑے एक ऐसे अंदाज से बात करते हैं कि जिससे यानी गुफ्तगू में एक बड़ा मसनूईपन सा भी आने लगता है। तो फरमाया कि गुफ्तगू शुरू कर दी और कुछ दरियाफ्त किया यानी पूछा, आपने खामोशी इख्तियार फरमा ली और इसकी बात का जवाब ना दिया। इससे इसने अंदाज़ा लगा लिया कि नबी सल्लम अदबी और बातचीत के तकल्लुफ को यानी फैब्रिकेटेड कन्वर्सेशन को नापसंद फरमाते हैं, यानी आपने कुछ कहा नहीं, खामोश हो गए। बस दफ़ा बाज़ लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, बाज़ लोग बोल के आपके सामने कहते हैं, बाज़ लोग ऐसी बातें लिखते हैं कि जिससे तसन्नो झलकता है, जिससे एग्जेजुरेशन झलकती है, जिससे आप खुद देख हैरान हो जाते हैं कि लोगों की सोच कैसी है। जितना वक्त लोग ऐसी बातें लिखने में लगाते हैं, अगर इस वक्त में 10 दफ़ा सुभान अल्लाह कहा जाता तो जन्नत में 10 दरख्त लग सकते थे। अगर हमें किसी से मोहब्बत है भी, तो क्या उसके लिए खूबसूरत लफ्ज़ बोलना और उसके लिए लिखना और उसके साथ कार्ड देना उसको और उसको ख़त लिखना, क्या ये लाजमी होता है? ये चीज़ें बाज़ दफ़ा एक आर्टिफिशियलनेस महसूस होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ना दिया। इससे क्या पता चलता है कि ऐसी चीज़ों का एक ही इलाज है कि खामोशी, और बाज़ लोग खामोशी से समझ भी जाते हैं। तो लिहाजा ये एक आपका तबलीग का अंदाज़ था। इसी से आप देखें कि बाज़ दफ़ा बच्चे बहुत कभी ख़राबी करते हैं, तो माओ को एक बड़ा अच्छा नुक्ता मिल रहा है, जवाब ही ना दे, बच्चा शाउट कर रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, अब ऊपर आगे से मम्मी और चीखती है, कैसे बोल रहे हो, ऐसे बोलना था, नहीं खामोश हो जाए। बचपन से मैं सोचती हूँ कि माएँ बच्चों को अगर ऐसा सी आदत डाल दें तो वो बड़े होने तक बड़े समझदार हो सकते हैं। बाज़ माएँ बच्चों को गुंद कर देती हैं, जैसे अक्खड़ मिजाज कह लें, या आप उनको इस तरह करें कि जैसे फिर उनकी हिस ख़त्म होती है, वो चीखे तो आप भी चीखे। अपने लिए इस चीज़ से अमल की नसीहत निकालिए कि क्योंकि अमूमन बच्चे ही इस तरह की बातें करते हैं ना जो नासमझी की होती हैं, बड़ों से तो इसकी उम्मीद नहीं होती, तो आप उसको जवाब ना दें जब तक कि आप उसको उसकी असल पिच पे ना ले आए। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ जब भी कभी मैं देखूँ कि बच्चे वाले घर में हो और बच्चे बहुत चीख चीख रहे हैं और माँ बेचारी पीछे पीछे फिर रही है, तो मैं उनको कहती हूँ क्यों आपने क्यों इसकी बात का जवाब दिया, अब खामोश रहती। आप देख लें अगर बच्चा चीख के कैंडी मांग रहा है मसलन, चीखने दें, आप ऐसे करें जैसे हुआ ही नहीं, फिर जब वो पूरा चीख ले, जब मौका गुजर जाए फिर आप उससे पूछें। मैं क्या करती हूँ जब मैं कभी किसी को इस तरह देखूँ, बाज़ दफ़ा लोग जहाँ आते हैं या कहीं मैं जाऊँ और बच्चों को देखती हूँ, बच्चे अपनी माओ के साथ मामला करते हैं, तो फिर मैं उसके बाद क्या करती हूँ, उनको बुला के मैं कहती हूँ कि बेटा मम्मी से कैसे बात करते हैं, तो बच्चे चुप होते हैं। कभी ऐसा होता है मैं फ़ोन पे बात करूँ ना तो किसी से मैं करी तो पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो बच्चे चीख रहे होते हैं, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि अपने बच्चे को फ़ोन दें। मैं उनसे नहीं करती बात, मैं उनको कहती हूँ अपने बच्चे को फ़ोन दें। फिर बच्चा आता है तो मैं उसको कहती हूँ अच्छा बात करके, फिर मैं कहती हूँ बेटा मम्मी से कैसे बात करते हैं, तो फिर बच्चे इतने प्यार नाइसली, तो वो कहती है आप कैसे कर रहे थे, आई वॉज शाउटिंग, तो फिर शाउट तो नहीं करना, ओके गो गिव हर केस, और इस तरह की बातें। तो बड़े प्यार से खामोशी से इस तरीके से तरबियत करनी है और इस तरह से लोगों से मामला करना है कि खुद ही समझ जाए। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। हाँ एक मरतबा एक शख्स आया, इसने आपसे नाज़ेबा बातचीत शुरू कर दी और सुस्त और नादहन तक कह दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, सुस्त तो आप समझ रहे, नादहन ना देने वाला। सहाबे कराम को पास से गुस्सा आ रहा था और वो इसकी तरफ बढ़े, मगर नबी सल्लम ने इन्हें खामोश बिठा दिया, ना खुद कोई जवाब दिया ना सहाबा को जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त दी, जिससे वो शख्स बहुत नादिम हुआ। तो क्या बात सीखी हमने कि जुबान से नहीं बोलना, तकरीर जो होती है वो सिर्फ जुबान की नहीं होती, खामोशी से जो बात कही जाए बल्कि उसका ज्यादा असर होता है। बस हम इसका एक और भी तबलीग के साथ इस तरह रब्त आप जोड़ सकते हैं कि बाज़ दफ़ा आप कहीं दर्स के लिए जाते हैं ना, अब लोग शोर कर रहे हैं, फिर जब शोर हो रहा होता है तो फिर आप कैसे बोलें, तो बाज़ ख़वातीन क्या आती कहती हैं आप शुरू कर दें, आप शुरू करें देखना ये खुद ही चुप हो जाएंगी। मुझे तो इतनी इंसल्टिंग ये बात लगती है कि ये सुनना नहीं चाह रहे, मैं क्यों सुनूँ, मैं क्यों बोलूँ, नहीं आप देखिएगा आप बोलेंगी तो सब चुप होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सलाम करके माइक होता है ज़रा मेरे पास, तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा, मतलब इस तरह का मैं उनको तासुर दे देती हूँ कि ठीक है अब जब आप समझते हैं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मुझे बताएं। ये दो लफ्ज़ बोलना ही पूरी महफिल को खामोश करवा देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग दबने लगते हैं। कभी भी ऐसी बात जगह पर बात डायरेक्ट ना शुरू करें, कोई बात ऐसी कर लें या कभी मैं इस तरह कह देती हूँ जब मैं देखूँ, अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम, रेयर और कब होता है जब किसी पार्टीज में लोग बुलाते हैं, बहुत लोग हैं, हाउस वार्मिंग है या कहीं बाहर हॉल्स में, जिसमें यानी लोगों का मूड ही सिर्फ बातें करने का होता है, तो उस वक्त फिर मैं यही कहती हूँ कि सलाम कर दूंगी। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा अभी तो लगता है कि आपका बोलने का मूड है, या अच्छा अभी तो आप सुनना नहीं चाहते। इस तरह मेरे पास जो सैटरडे को एक टीन बच्चियों की और बच्चों की क्लास होती है, तो मैं जब उसमें आती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, माइक पे आके मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। अब माशाल्लाह जो भी हॉल में लोग बैठे हैं तो उसके साथ एक भरपूर आवाज़ आनी चाहिए, तो मुझे आवाज़ें मरी मरी 4-10 आवाज़ें आती हैं वालेकुम साहब, फिर मैं कुछ नहीं कहती, मैं खामोश होकर फिर कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, फिर थोड़ी सी आवाज़ें और उभरती हैं। शुरू में उनको समझ नहीं आती थी क्या करती हैं, फिर मैं 3 दफ़ा तीसरी दफ़ा करती तो पूरा माशाल्लाह हॉल वालेकुम अस्सलाम, मैं कहती हूँ अब पता चला है कि आप सबक सुन रहे हैं। यानी कई हरकतें होती हैं जिसे आप सिखा सकते हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप शोर करें। अब आप डांट में डांट भी तो सकती हैं ना, आपने सलाम नहीं की, देखें आपको शर्म नहीं आती, ये है टीचर आ गई, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अब अभी बातें कर रहे हैं, नहीं, जिसने जो किया उसको वैसे ही टाके ठोके। बस किसी का बोलता हुआ देखें तो आप क्या कर सकते हैं बात करते हुए, कि आपने कहेंगे अच्छा, यानी आप उसी से कोई ऐसी बात कहें कि जिसकी वजह से उसको समझ आ जाए कि मुझसे पूछा है। मैं जब देखती हूँ ना क्लास में कोई टेंशन नहीं दे रहा, या लिख रहा है या बातें कर रहा है, तो मैं बीच में टोक रोक के रुकती हूँ ना, अच्छा आप बताएं आपने क्या सीखा, तो फिर मैं उसी से पूछती हूँ, तो वो एकदम घूम जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं, तो फिर मैं कहती हूँ मुझे पता है आप नहीं सुन रही थी या आप नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह, अब यहाँ तो हम इस तरह नहीं कर रहे, लेकिन आपको इसी कोर्स के दौरान इंशाल्लाह पूरी टीचर ट्रेनिंग देनी है हमने, आप खुद ही सीख लेंगे कि लोगों को कैसे ट्रेन करते हैं और कैसे हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, यानी ये भी चीज़ है यहाँ। बल्कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के नाते से देखती हूँ कि रेड डॉट दिया जाता है ना, कि उसका नतीजा क्या होता है कि लोग लिख भी नहीं सकते और लिखें तो हमें नहीं मिलता। मुझे प्रैक्टिकली खुद नहीं पसंद ये चीज़, मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर इतना कूल और कामनेस आ जाए कि वो खुद ही ना लिखें। और मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ जब अनफॉर्मल सी स्पीच कोई होती है, तो मैं कहती हूँ रेड डॉट टेक्स्ट खुला रहने दें, लेकिन कोई नहीं लिखेगा। और मुझे हैरत किस पे होती है कि जब लोग क्लासेस के दौरान पीएम्स करते हैं, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरी तो शायद आईडी बंद होती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि कुछ लोग इसके बावजूद एक दूसरे को पीएम्स करते हैं, हैरान होती हूँ कि ये यहाँ भी बैठ के सोशलाइजिंग कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। चलिए आगे चलते हैं। वाज व तबलीग का नबवी अंदाज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक तरीक़ा था कि दूसरों को वाज थोड़ा करते मगर इस बात पर खुद अमल ज़्यादा करते, जिसका नतीजा ये होता कि लोग ज़्यादा असर ले लेते और आपकी बात तवज्जो से सुनते। अगर किसी आदमी से गलती हो जाती तो आप मुमकिन हद तक इसका नोटिस ना लेते, किसी बात को नापसंद करते तो भी खामोश रहते, अगर समझाना ज़रूरी होता तो तरीके से उसी वक्त बात समझा भी देते। आपकी ज़िंदगी अमली थी, अगर सच का हुक्म देते तो खुद सच बोलते, अगर अमानत का हुक्म देते तो खुद अमानत का पास फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत नबूवत से पहले भी ज़र्बुल मिसल थी। अगर शराफ़त की तलकीन फरमाते तो हमा वक्त यानी हर वक्त शराफ़त का लिहाज रखते, अगर शर्मो हया की तालीम देते तो ख़ुद शर्मो हया का पास फरमाते। हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा शर्मो हया की पैकर थी। अगर आप इबादत और रज़ात या तस्बीह व तहलील का हुक्म देते तो पहले इन पर ख़ुद अमल करते। आपकी पूरी ज़ात अक़दस अमल की जीती जागती तस्वीर थी। हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा शुक्र शर्मो हया की पैकर थी। अगर आप इबादत और रज़ात या तस्बीह व तहलील का हुक्म देते तो पहले इन पर ख़ुद अमल करते। आपकी पूरी ज़ात अक़दस अमल की जीती जागती तस्वीर थी। यहाँ तक अगर हम बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुबल्लिग़ और एक उस्ताद होने के नाते से हमें नज़र आते हैं कि वो लोगों को बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कहते थे, बल्कि अमल से करके दिखाते थे। और हकीकत भी ये है कि जितना असर इंसान के अमल का आता है उतना उसकी बातों का नहीं आता। मैंने एक जगह पढ़ा कि टनों वाज से बेहतर है कि इंसान चंद औंस अमल कर ले। अमल का एक औंस इंसान के लिए अमल के रास्ते दूसरों के लिए आसान कर देता है। तो यहाँ तक जो बात हुई इससे हमें नबी सल्लम के अमल से जो बात मिली उसमें एक बात तो क्या है कि बात बहुत लंबी नहीं करनी चाहिए ताकि सुनने वाले शौक़ से सुने और ऐसा ना हो कि थकन की वजह से वो उस चीज़ को तवज्जो से ना सुन सकें। दूसरी चीज़ जो इस हिस्से में थी वो ये थी कि किसी की गलती पे फौरन नहीं टोकते थे, खामोश रहते थे। याद रखिए कि जब आप आम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए निकलेंगे तो बहुत ही ऐसे मौके आपको दिखेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप इनको टोकें या समझाएं, क्योंकि लोग जब दीन से दूर होते हैं, किताब से दूर होते हैं, तो उनको बोलना चालना, रहना सहना, उठना बैठना, इवन बात करने का अदब भी नहीं आता। बात जब कहा तो मैंने देखा है कि ना पढ़ने वालों की तो बात अलग है, पढ़े लिखे लोगों को बात का अदब नहीं आता। इल्म की हद तक बहुत पुख्ता होते हैं लेकिन अदब नहीं होते। बात करने के अंदाज़ में क्या बात हो, तो बाज़ दफ़ा फिर इंसान सोचता है कि क्या हर वक्त टोकता ही रहे या क्या हर बात कह के ही कही जाए। तो उस वक्त के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अमल क्या है, खामोश हो जाए। जब आप कभी किसी को देखें कि वो बात दुरुस्त अंदाज से नहीं कर रहा या उसको नहीं करनी थी, तो मौका ना हो बात समझाने का तो खामोश रहे, लेकिन किसी दूसरे मौके में उनको देख के जहाँ वाकई महसूस हो कि वो बंदा बात सुन सकता है तो फिर समझाने से भी फ़ायदा होता है। फिर एक और चीज़ जो मिलती है वो क्या है कि जिस बात का दूसरे को अमल हुक्म दें उस पे ख़ुद भी अमल करें। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मिलता है कि एक माँ एक बच्चे को लेके आई और कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लम ये मीठा बहुत खाता है तो आप इसको समझाइए। तो आपने क्या फरमाया, कल लेके आना। क्यों? कि आज तो मैंने खुद अभी मीठा खाया हुआ है, तो जो बात मैं इसको कहूँगा फिर उस पे असर नहीं होगा। अगर वाकई हम सब इस बात पे कान धरें तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी वाकई तब्दीली आए, हमें बहुत ना कहना पड़े और लोग तब्दील हो जाएं। आजकल तबलीग का असर इसलिए भी कम होता है कि जो वाज या लेक्चर दिया जाता है खुद इस पर अमल नहीं किया जाता। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, इखलास और अमल दोनों का फुकदान है यानी कमी है। जबकि नबी सल्लम की ज़ात अकदस में दोनों औसाफ़ की अफराद थी यानी दोनों तरह की खूबियाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा थीं। नबी सल्लम जो कुछ वाज़ और तबलीग फरमाते इसकी एक एक बात पर अमल फरमाते और आपके हर अमल में बेपनाह इखलास होता। बहुत से लोगों ने तो नबी सल्लम के हुस्न आमाल और आला किरदार को देख कर अपनी ज़िंदगियाँ संवार लीं। तारीख़ और सीर के मुकाबले से ये पता चलता है कि बीसवों नहीं सैकड़ों हज़ारों मुसलमान लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और खूबसूरत सीरत को देखकर हल्का बगोशे इस्लाम हुए। यानी आज आप देखिए कि हम एक इल्ज़ाम सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों की ज़ुबान से जो अपने दिल में तासुब रखते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, और वो इल्ज़ाम क्या है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। हकीकत यह है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं, इखलाक के ज़ोर से फैला है। जितने लोग अल्लाह के नबी सल्लम और आपके साथियों के इखलाक से मुतासिर होके मुसलमान हुए उतने हैं वो दूसरी तलवार से नहीं मुसलमान हुए। यही खूबी है इस इस्लाम की। अगर आज हम मुसलमानों के इखलाक संवरने लगें, आज हमारे मामलात में दयानतदारी आ जाए, सच्चाई आ जाए, सफाई का ख्याल आ जाए, वो आला अदब जो किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, अगर आज हम मुसलमानों में आ जाएं तो फिर वाकई इस्लाम उतनी ही तेज़ी से फैलेगा जितनी तेज़ी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबे कराम के दौर में फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में दूसरों की इस्लाह और खैर ख्वाही का वाफिर जज्बा होता था। कोई तमा, कोई लालच, कोई बड़ाई और किसी किस्म का जज्बा बरतरी न होता था। यानी आप देखिए कि ये अमूमन वो खराबियाँ जो दीन की बात कहने और सुनने वालों के अंदर आने लगती हैं। कभी लालच होता है कि कोई बात कहेंगे तो उसके बदले में कुछ मिलेगा, कहीं अपनी ज़ात को बड़ा करना चाहते हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन की नीयत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, एक चीज़ थी और वो क्या थी, लोगों की इस्लाह और खैर ख्वाही का जज्बा। और यही है वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह के दीन का काम बेलौस होके करवाती है, फिर इंसान परवाह नहीं करता इस बात की कि मेरे हालात इजाज़त देते हैं कि नहीं, बल्कि फिर इंसान उसी काम में चल पड़ता है। आपका लहजा मुनकिसराना होता था, ना कि तहक्कुमाना। मुनकिसराना क्या होता है? ह्यूमिलेटेड। और याद रखिए, किसके रवैये में इनकिसार आता है, किसकी बात बड़ी झुकी हुई और दबी हुई होती है? जिसके दिल में लोगों की इस्लाह हो, की ख्वाहिश हो, दर्दमंदी हो। अगर आप देखिए कि हम दूसरों को गुनाहगार और बुरा और ख़राब ही कहते और सोचते रहें तो क्या होगा? एकदम टोन बदल जाएगी ना। हम बड़ी 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 बातें करें, टॉन्टिंग अंदाज होगा हमारा, लेकिन जब आप किसी के लिए सिंसियर होते हैं तो आप तो आजजी वाले अंदाज पे आते हैं। कभी माओं को देखा करें जब बच्चों को खाना खिलाती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे इस बच्चे का खाना खाना इस माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। प्यार से फिसलाती हैं, पुकारती हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी गैर को कुछ कहना हो तो क्या अंदाज होता है? खाते हो तो खाओ, भूख लगी है तो खा लो, नहीं खाना तो ना खाओ। फ़र्क क्या है? तड़प का फ़र्क है, इखलास का फ़र्क है। जब किसी के लिए मोहब्बत होती है, इंसान उससे बात करते हुए भी अपने लहजे में नरमी लाता है। हम सब भी अगर चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पे चलें, तो फिर हमें भी अपने दिल में लोगों की तकलीफ़ महसूस करनी है, उस दर्द को महसूस करना है। ए अल्लाह, ये आग में चले जाएंगे? ए अल्लाह, ये मेरी ज़रा सी कोताही से ये जन्नत से महरूम हो जाएंगे? मैं पैगाम ना पहुँचाऊँगी तो ये बेचारे क्या इससे महरूम हो जाएंगे? जूँ ही आप इस तरह सोचेंगे, आप देखेंगे कि आपका दिल बदल जाएगा और आपकी कोशिश के अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। फिर इसी तरह आपकी बात भी नरम और ख़ूबसूरत होती है। बाज़ लोग सोचते हैं कि नरम बात करना ज़ुबान का काम है, ये बहुत बड़ी भूल है। याद रखिए, अगर आप बात नरम करना चाहते हैं तो दिल को नरम कर लें, अपने दिल के अंदर रिक्कत लाइए, अपने अंदर दर्द महसूस कीजिए, तकलीफ़ महसूस कीजिए, खुद बहुत ज़ुबान पे इजहार होगा। ज़ुबान तो एक जस्ट कैरियर है, दिल के अंदर जो आता है ज़ुबान उसको इजहार देती है। अगर दिल कठोर हो, दिल अपनी बड़ाई के एहसास से मामूर हो, तो ज़ुबान पे कभी नरम बात नहीं आती, वो और चापलूसी और आर्टिफिशियल अंदाज लगता है। लिहाजा दिलों के अंदर अगर हमारे सच्ची तड़प पैदा हो जाए अल्लाह के नबी वाली, तो इंशाल्लाह ताला आज भी वही असर हमारी बात में हो सकता है। फिर एक और ख़ूबी आपकी क्या होती थी बात करते हुए? देखने वाले को यूं लगता जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे कोई तमाह या लालच हो। यानी इतनी उसकी बात करते, इतनी उसके पीछे लगते, ये भी ले लो, ये भी कर लो, ये सीख लो, कि सुनने वाला आने वाला या बात करने वाला ये महसूस करने लगता है कि शायद इनका कोई लालच है। ज़रा सोचिए तो सही, आज के दौर में तो मैंने देखा है कि जो पेड टीचर्स होते हैं उनकी नज़र घड़ी पे होती है, 1 मिनट आगे नहीं होने देंगे, टाइम ख़त्म हो गया, बाकी बात कल करेंगे। लेकिन जब उस्ताद के दिल में खैर ख्वाही होती है तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी देने को तैयार होता है। क्यों? कि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। इस आप कभी पीछे के दौर में अपने वालदैन से पूछें, अपने नानी दादा से पूछें। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे बड़ों में यानी सुनाते थे, हमारे वालिद ही सुनाते थे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो मास्टर साहब थे वो एक एक बच्चे को तब तक घर नहीं जाने देते थे जब तक उसको सबक ना याद हो। तो सारी सारी क्लास को छुट्टी हो जाती थी और उस बच्चे को छुट्टी नहीं होती। तो मैंने पूछा कि क्या फिर उस बच्चा अकेला स्कूल में रहता था? कहते नहीं, टीचर भी बैठते थे। वो कई दफ़ा मगरिब तक वहाँ बैठते थे क्योंकि ये इस बच्चे को सबक याद नहीं और मैं इसको जाने नहीं दूंगा, और ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा। ज़रा आज के दौर के हिसाब से इसका जायज़ा तो लीजिए। मेरा लगे आज घंटों को गिनने वाले, मिनटों को गिनने वाले न जाने कितना क्लेम कर दें स्कूल वालों के नाम पे कि हमने इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया है। याद रखिए, ये दीन का काम बाजारी काम नहीं, ये सिर्फ एक कारोबारी काम भी नहीं रहा। ये ऐसा काम नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक इस नज़र से कर लें कि चलो ठीक है, पैसे लिए हुए, अब लोगों को हक देना है। अल्लाह के नबी सल्लम, और इतनी दिलदारी करना कि ये सीख लें कि अगला सोचे कि शायद वाकई इनको हमसे कोई लालच है। हाँ, लालच तो होता है दीन वाले को, क्या कि उसके दिल को इत्मीनान और सुकून मिलता है कि मैंने अपने रब की बात अपने बंदों तक, उसके बंदों तक पहुँचा दी, अल्लाह ताला मेरी ये कोशिश कबूल कर ले। फिर इसी तरह एक और आपकी चीज़ क्या थी? तबलीग के वक्त आप गैर को भी अपना समझते और मुखातिब से नहायत शफकत और मोहब्बत से पेश आते और मुमकिन हद तक इसकी पास खातिर और दिलदारी फरमाते। اور بوقت ضرورت منت اور خوشامد سے بھی دریغ نہ فرماتے، اور یہ سب کچھ محض اور محض اس لیے کرتے کہ مخلوق جہنم سے بچ جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے. کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیے کہ اپنا غیر کو بھی اپنا سمجھنا. بعض دفعہ دین کی بات کرنے والے کی بات میں انکلائنیشن آنے لگتی ہے، ایک طرف جھکاؤ آنے لگتا ہے، اور غیروں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے نہیں. بعض دفعہ کہیں آ کے بیٹھے ہوئے لسنرز کو یا وزٹرز کو اس طرح اگنور کر دیا جاتا ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، آپ پیچھے بیٹھیے، آپ آگے نہیں آ سکتے. اگر کسی کوئی نیا بندہ پہلی دفعہ آیا اور وہ آگے آ کے کرسی میں بیٹھ گیا، تو بعض لوگ بہت ہی زیادہ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہمارا اصول ہے آگے کوئی بیٹھ نہیں سکتا لسنر، تو ان کو ان کی بزرگی اور ان کی بڑائی کا احساس کیے بغیر پیچھے بٹھا دینا یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، مینجمنٹ اچھی چیز ہے، اصول ہونے چاہیے، ضابطے ہونے چاہیے، لیکن جتنا آپ لوگوں کو اپنا سمجھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اتنے ہی وہ لوگ آپ کے لیے ہی بعد میں فائدہ مند ہوں گے. بعض دفعہ ایک خاص مسلک اور ایک خاص چھاپ لگا لیتے ہیں، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے ادارے کے لوگ نظر آتے ہیں تو دل کھل جاتے ہیں ان کو دیکھ کے. اسی محفل میں کوئی دوسری جماعت کا بیٹھا ہو یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے کام کرنے والا ہو تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ ساری خرابیاں ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کو ہر اس انسان سے محبت ہوگی جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور اگر آپ کو ناموں سے محبت ہے، انسانوں سے محبت ہے، شخصیات اور اداروں سے محبت ہے، تو پھر آپ واقعی اسی وقت ہی خوش ہوں گے جس وقت ان کا نام لیا جائے. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں الگ الگ بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب. اضطراب کیا ہوتا ہے؟ بے چینی، پریشانی، دل میں ایک کسک لگی ہوئی ہے، کیا کروں. یعنی آپ کے دل میں جو ایک غریب تھا، آپ بہت دوسروں کے لیے درد محسوس کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کو کفر، شرک، نفاق اور فسق و فجور میں دیکھ دیکھ کر بہت کڑھتے تھے، اور بسا اوقات آپ کی یہ کڑھن اور تکلیف حد سے بڑھ جاتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب اور بے کلی کو دیکھ کر رب العالمین کو کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر یہ لوگ اس مقدس کلام اس کلام مقدس پر ایمان نہ لائیں، شاید آپ کو تو ان لوگوں کے پیچھے رنج و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. یعنی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو یہی غم لگایا ہوا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. کیا وجہ ہے کہ لوگ اس بات کی طرف نہیں آتے کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں؟ کبھی ہم بھی تو اپنے دلوں کو دیکھیں. کیا ہم بھی لوگوں کے لیے اس طرح محسوس کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم لوگوں کے لیے اس طرح کی خیر خواہی رکھتے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے دل کو لگتی ہے بس وہی اس کو جانتا ہے. یہ وہ درد ہے کہ جس دل میں آتا ہے پھر وہی بے چین ہوتا ہے، دوسرے اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے دلوں کو جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم بھی لوگوں کے لیے اتنا ہی درد محسوس کرتے ہیں. کیا جاتا اگر لوگ دین پہ نہ آتے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا کمی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ اللہ نے سب کچھ دیا، پیغام بھی پہنچا دیا، اب چھوڑو، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم کیوں ان کے پیچھے لگیں؟ لیکن نہیں، آپ لوگوں کے پیچھے ہلکان ہوتے. آج ہم روتے ہیں تو بہت رو لیں گے تو اپنے بچوں کی بے دینی پہ روئیں گے، ہمیں بہت غم لگے گا تو اپنے شوہر کا لگے گا. میں تو دیکھتی ہوں بھائی بہنوں کا بھی اتنا نہیں لگتا. سسرالی رشتے والوں کو تو ہم ویسے ہی اپنا نہیں سمجھتے، ان کا غم کیا لگائیں؟ کہاں ہم اپنے پڑوس میں رہنے والوں کا غم لگائیں؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. سورۃ غاشیہ آیت نمبر 22 سے 23 ہے یہ. اور تو ان پر کوئی داروغہ نہیں لگا ہوا، یعنی گارڈ مین، کوئی پھرے یا انکار کرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آپ سے اس کے بارے میں باز برس نہ ہوگی؟ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے باز برس نہ ہوگی؟ دیکھیے اس کو. तो हम देख रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कितनी तड़प थी लोगों को हक बात कहने की और पहुंचाने की। इसी तरह एक और आपकी जो बात अल्लाह ताला ने आगे बयान की, हरीसुन अलैकुम। हरीस कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर हिर्स हो हक बात को पहुंचाने की या किसी भी चीज़ की। इसमें कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महज ये ड्यूटी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जो कुछ नाजिल होता है वो लोगों तक पहुंचा दें। अगर आप इतना ही करते तो भी काफ़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़पुरस ना होती। बाज़पुरस का मतलब ये कि इसका हिसाब ना होता या इसका सवाल ना होता कि आपने यानी ऐसा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी आपको दी थी उसी ज़िम्मेदारी को आपसे मतलब पूछा जाता। लेकिन आपने सिर्फ इसी पर इक्तफा ना किया। इक्तफा ना किया का मतलब यह है कि आप सिर्फ इसी पर ना रुके। इसी की वजह से यानी आपने ये नहीं कहा कि ठीक है मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, बल्कि आप उससे आगे बढ़ के भी वो काम करते रहे। कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफ़ात महमूदा का जिक्र फरमाया। सिफ़ात महमूदा क्या होती हैं? पसंदीदा, यानी अच्छी आपकी सिफ़ात, तारीफ़ की हुई, महमूदा हम से तारीफ़ की हुई, जिनमें एक क्या बयान की गई, हरीसुन अलैकुम। सूरह तौबा आयत 128 में एक आयत के दौरान अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात कही, तो इसी का जिक्र है इसमें कि आप यानी ये पैगंबर तुम्हारे ईमान लाने पर हरीस हैं। यानी इनको इस चीज़ की बहुत ही हैस है कि आप ईमान लोग ईमान ले आएँ और लोग जो हैं अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएँ। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि चंद रूसाए कुरैश यानी कुरैश के बहुत रिच पीपल आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ मौजूआत पर तबादले ख्यालात करना शुरू कर दिया। गुफ्तगू जारी थी कि इतने में एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हो हाजरे हिदमत हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी ये अदा नागवार गुजरी। आपने इनसे मुंह मोड़ लिया और आपकी पेशानी पर बल सा आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा को अल्लाह ताला ने आपके शायान शान न जाना और फौरन वही इलाही नगमे बार हुई, अबस व तवल्ला अंजा अहुल आमा वमा युदरी कला अल्लहु यज़्ज़क्का। मुंह फेर लिया और चेहरे पर शिकन डाली कि इसके पास एक नाबीना आया और ए महबूब तुझे क्या खबर, शायद के वो तज़किया हासिल करता। इस वाक़े से बहुत सी बातें मालूम होती हैं, मगर इस वक्त हमें ये बताना मकसूद है। यानी हमारा मकसद ये है कि यही बात बता दी जाए। और वो क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज ये हिर्स और लालच था कि ये अमीर लोग क्रैश के शायद हल्का बगोश इस्लाम हो जाएं, यानी ये मुसलमान हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें। और यही वो मकसद था जिसके पेश नज़र आपने अज़ियतें बर्दाश्त की, कलिमाते तान सुने और आवाज़ें किस कसवाए, यानी जो लोग आवाज़ें लगाते हैं दीन की वजह से, तकलीफ़ बर्दाश्त की, सरज़मीन ताइफ में पत्थर खाए और लहू लुहान हुए, अजीज़ों को तड़पाया और साथियों को कटवाया। अल्लाह अकबर। कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं दी इस प्यारे दीन को हम तक पहुंचाने की? हमारे लिए अमल की बात इसमें यही है कि हम अपने दिलों का जायज़ा लें, और जब तक अपने दिलों को हम नहीं टटोलेंगे कोई दूसरा हमसे ये काम करवा नहीं सकता। पूछिए अपने अंदर बैठे हुए छुपे हुए एक इंसान को कि क्या मेरे अंदर तड़प है, क्या ये हिर्स है मुझे कि लोग अल्लाह के दीन से जुड़ जाएं और लोग अल्लाह ताला की बात को मान लें। कितना को तड़पते हैं हम। तड़प तो वो होती है जो इंसान को वाकई उसके अंदर जुड़ जाए और उसको बेचैन कर दे, बेकल कर दे, बेकली सी लगी हुई कैफियत। कभी ख्याल भी आता है किस तरीके से इन मुसलमान आज रुसवा हो रहे हैं और जलील हो रहे हैं और उनके ऊपर इतनी सख्तियाँ आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मुसलमान हम इनफरादी तौर पे देखें तो हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक नुक्ता लम्हे फिक्र है और गौर करने की बात है कि क्या हमारे अंदर ये हिर्स आई कि ना आई। इसके बाद नबी सल्लम के मौसर अंदाज़ तबलीग पे कुछ बात है कि आपकी तबलीग का अंदाज़ नहायत मौसर। मौसर कहते हैं असर करने वाला, यानी जो बात दूसरों पे असर करे और उम्दा होता। आपने अगर किसी फ़र्द को कोई बात समझाना होती और इसकी गलती पर इसे मुतनबह करना होता। मुतनबह करना क्या होता है? यानी उसको उस चीज़ की के ऊपर यानी जैसे आप कहते हैं ना कॉन्शियस करना, ये मतलब है इसका इंग्लिश में, तो अलहदगी में इसे बड़ी मुलायमियत और मुलातफत से समझाते, मुलायमियत और क्या सॉफ्टली, बड़े लुत्फ के साथ, बड़ी नरमी के साथ समझाते, मजमे में इसे शर्मिंदा ना करते, अगर मजमे में इसे कुछ कहना होता तो एक को मुखातिब ना करते बल्कि सबको मुखातिब फरमाते, इस तरह वो शख्स आप से आप अपनी इस्लाह कर लेता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आपने ख़ुद भी तबलीग की और दूसरों को भी तबलीग की तलकीन की, जिसका नतीजा ये निकला कि सहाबे कराम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु की पूरी जमात मुबल्लिग बन गई, जिनकी तबलीगी मुसाई, मुसाई कहते हैं कोशिश को, सा से सही की बदौलत दुनिया भर में इस्लाम फैल गया। अब देखिए कि अगर हम आज इस चीज़ को देखें और वो क्या है कि हम अपने आप को किस हद तक लेते हैं, हम क्या करेंगे, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ से लोगों को बात पहुंचाई, क्या आज हम भी उतनी कोशिश करते हैं? अपने आप को पूछें, ठीक है बात पहुंचाना काफ़ी है, कर दी, लेकिन एक लफ्ज़ जो काबिल गौर है कि जिसका हक है, क्या एक काम उतना कर दिया जितना करना था? अब देखिए कि एक काम को जितना करना होता है उतना अगर ना करें तो किया हुआ भी ज़ाया हो जाता है, ये सच है कि नहीं? क्योंकि आप मिसाल है कि अगर आप खाना पका रहे हैं, आपने उसको 1 घंटा पकाना था लेकिन आधा घंटा पका के आप उसको उतार लें चूल्हे से और लोगों को कहें खाओ, तो क्या करेंगे? वो नहीं खाएंगे ना, फेंक देंगे, आपकी ज़ाया हो गई वो खाने की मेहनत, जो वक्त लगाया था वो भी ज़ाया हो गया। आप क्लीनिंग कर रहे हैं, आप आधे कमरे में क्लीनिंग कर लें और बाकी जो है उसको आप यानी ये छोड़ दें, थोड़ी देर में बच्चे वो फैलाया हुआ जो साफ हिस्से को भी गंदा कर देंगे। तो लिहाजा अगर हमने कोशिश कर ली तो फिर बात जो है हम सब उतनी कोशिश करें कि जितनी कोशिश का फायदा होगा, अपना जायजा भी साथ साथ ही लेते जाइए कि क्या वाकई हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम के साथ ही आपके सहाबा एक पूरी टीम तैयार हो चुकी थी इस काम को फैलाने वाली, क्योंकि कभी भी लीडर हमेशा साथ नहीं रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जितना बड़ा था, आपके अजायम उतने ज़्यादा थे, आपने उतने ही अच्छे लोग तैयार किए जो आपके जाने के बाद इस काम को बढ़ा सकें, और इसी वजह से आप देखिए कि वो काम कितनी जल्दी फैल गया और उस तरीके से वो लोग उस चीज़ के अंदर अपने आप को महसूस करने लगे कि हम अल्लाह के नबी सल्लम के मिशन को आगे लेके चलेंगे। और एक कामयाब उस्ताद जो है वो ऐसा ही होता है कि अपने पीछे के लिए काम अपनी ज़िंदगी ही में कर दे। इसके बाद देखिए कि सहाबे कराम की निगाह में तबलीग का क्या मुकाम था, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ जी आप तो अल्लाह के नबी थे, आपको तो ये करना ही था, हाँ तो आप तो आए ही इसीलिए थे। हम अब फौरन अपने आप को दूसरे लेवल पे ले आते हैं कि हम तो उम्मती हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो उम्मती होने के नाते सहाबे कराम हमारे लिए बेहतरीन एक मिसाल बन सकते हैं। तो इनके बारे में लिखते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया है कि वो सहाबे कराम जिनकी तादाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 1,44,000 यानी 1,100,000 और उसके बाद 44,000 के करीब पहुंच चुकी थी, इन सब की कब्रें अरब में क्यों नहीं हैं, दुनिया भर में क्यों बिखरी पड़ी हैं? एक जमात अगर अक्साए मशरिक में मदफून है तो दूसरी अक्साए मगरिब में, यानी एक मशरकी किनारे पे, यानी एक ईस्ट में कोई फौत हुए तो कोई वेस्ट में, एक शिमाल के आखिरी किनारों में आराम फरमा रहे हैं तो दूसरे जनूब के किन दूसरे किनारों में। दरअसल आम सहाबे कराम नबी सल्लम की ज़ुबान अक़दस से तबलीग के फ़ज़ाइल और महासिन सुनकर तबलीग के लिए दूर दराज निकल गए थे। तबलीग के लिए उन्होंने घरों और बच्चों बीवी को तर्क कर दिया, मक्के और मदीने जैसे मुबारक शहरों को छोड़ दिया था, वो मक्का जिसमें मस्जिद हराम है और वो मदीना जिसमें मस्जिद नबवी है, महज तबलीग की खातिर वहाँ की सकूनत को खैर बात कह दिया। कभी आपने इस नुक्ते पे गौर किया? हम होते तो अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात के बाद वहीं मदीना में बैठ जाते और जालियों को चूम चूम के रोते रहते, लेकिन सहाबे कराम की नज़र नबी सल्लम की ज़ात से ज़्यादा उस मिशन पर थी जिसको अल्लाह के नबी सल्लम लेके चले थे, और आपने इसीलिए उस मिशन के ऊपर बात जो थी वो बढ़ाई और लोगों ने उस पैगाम को फैलाने के लिए अपनी जिंदगियां तर्ज कर दी। कोई सहाबी होगा जो मदीना में रह गया, सब अपने हिस्से मराते मुख्तलिफ जगहों में गए। जो इल्म का काम कर सकते थे वो तबलीग के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में निकल गए। जो जिहाद कर सकते थे उन्होंने जिहाद किया। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो जो पुराने साथियों में से थे उन्होंने मरकज़ को संभाल लिया और इस तरह इतने खूबसूरत तरीके से दीन का काम फैला कि आज तक उसकी किरणें हम अपने घरों में महसूस करते हैं। हम सब के लिए इसमें बहुत ही खूबसूरत सबक है। दुनिया के किसी खित्ते में भी रहें लेकिन काम वो करें जो अल्लाह के नबी का काम था, मिशन वही हो जो उनका मिशन था। आज भी जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले अपनी निजी ज़िंदगी को देखें तो क्या दिल चाहता है कि इंसान जाके मक्का में बैठ जाए और आराम फरमाए और वहाँ काम करे, इबादत करे, जमजम पिएगा और नमाज़ें अपनी एक की लाख लाख नमाज़ें कर ले। लेकिन जब इंसान अपने मिशन को और अपने मनसब को देखे और इंसानियत की तड़प हो तो फिर ऐसी जगहों में जहाँ वाकई काम की ज़रूरत है वहाँ रहने की ज़रूरत है। तो लिहाजा बात का खुलासा क्या है कि हम भी अगर अपने दिल में इसी चीज़ को महसूस करें कि इंसानियत को कितनी ज़रूरत है इस वक्त अल्लाह की बात अपने रब के पैगाम को सुनने की, तो फिर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि वो दौर जिस दौर में अल्लाह के नबी और आपके साथी थे, माइक तक नहीं था, स्पीकर नहीं थे, कोई तसव्वुर नहीं था, ये इस ज़ुबान से बोल बोल के फैलाया हुआ दीन है। हम तो ज़रा चार लोग ज़्यादा हों तो हम बोल नहीं सकते माइक के बग़ैर, बोल लेंगे तो अगले घंटे में नहीं बोल सकेंगे। लेकिन कभी आप उन कुर्बानियों को ज़रा महसूस तो करें किस तरीके से ये बात कही। मुझे वो इल्म की महफिल याद आ रही है कि जब किसी शहर में कोई एक इल्म वाला आता था, बड़े बड़े आइमे कराम के जो दीनी हलके होते थे, लोगों का इतना इज्तेहाम होता था, इतना हजूम था कि एक दूसरे को बात पहुंचाने के लिए पूरी सफ़ें बनती थी। जो उस्ताद होते थे वो आगे से बात करते, फिर अगली चार पांच सफ़ों में बैठे हुए लोग उस बात को सुनते, फिर हर चंद सफ़ों के बाद एक और शख्स खड़ा होता, वो उस्ताद की सुनी हुई बात को दोहराता, तो उसकी बात फिर उससे अगली सात सफ़े सुनती और इस तरह आखिरी सफ़ों में जाते हुए वो बात जो उस्ताद ने अभी कही थी वो तकरीबन आधे घंटे तक आगे पहुंचती। इतनी मुश्किलों से ये दीन सहा है। आज हमारा मामला क्या है? ज़रा आवाज़ बदल जाए, ज़रा आवाज़ टूटने लगे तो हम कहते हैं छोड़ो आज नहीं सुनते, आज क्या करना है सुन के समझ नहीं आती। उन्होंने दीन की कदर की, किस तरीके से वो तड़पते थे इस दीन को लेने के लिए, धूप में खड़े रहते सारा सारा दिन, वहाँ इंतज़ार में रहते कि कब कोई दीन की बात मिले और हम उसको लेके जाएं। ये इन्हीं कुर्बानियों और इसी इखलास की वजह से फैला हुआ दीन है जिसको आज हम और आप कितने आसाइश और पुर आसाइश माहौल में बैठ के सुनते हैं। जितनी अल्लाह की नेमतें हैं फिर उतना उसका हक भी ज़्यादा अदा करना है इंशाअल्लाह ताला। दिलों से नियत कीजिए, हर मुमकिन वसीला हर मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल करना है अल्लाह के इस पैगाम को आगे पहुंचाने का। एक ज़ुबान हिलानी पड़ती है ना, कितनी मुश्किल है। एक टेलीफोन कॉल करना हमारे लिए क्या मुश्किल हो गया। हम कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में जाएंगे, हम कहाँ उनके उस गिरोह में खड़े होंगे क़यामत के दिन। हमें तो अल्लाह के नबी की सिफारिश लेनी है। याद रखिए सिफारिश उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने आपके मिशन को पा लिया। फिर ज़िंदगी में ख़ताएँ होंगी, गलतियाँ होंगी, इंसान से कमियाँ होंगी, अल्लाह के नबी कहेंगे कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनको माफ़ कर दे, इनका मिशन मेरा मिशन था, इनका तरीका वो था जो मेरा तरीका था, ये उस तड़प के साथ जिए जिस तड़प के साथ मैं जिया। फिर सिफारिश होगी और यही है मुकाम सिफारिश। हम क्या कहते हैं, हम आरामदेह माहौल में बैठ के अपनी इनफरादी ज़िंदगियां जी के मरें और अल्लाह के नबी के अल्लाह इनको माफ़ कर दे, ये है मेरे नाकारा उम्मती, ये है मेरे बेदर्द किस्म के लोग, ये हैं वो लोग जिन्होंने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी और अपने माल को कमाना और अपने घरों को सजाना ही अपना मिशन बना रखा था। तो याद रखिए अगर आज हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब को पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी को अपने लिए लेना चाहते हैं, तो फिर साथ साथ दिल को भी खोलना पड़ेगा, इसके बंद दरवाज़ों को खोल के अपने लिए नियत करें। मैं आप सबको 10 सेकंड देती हूँ कि आप सब कोई एक ऐसी अच्छी नियत करें कि जो कल हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम की इस सुन्नत को फॉलो करने वालों में खड़ा कर दे कि जो आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने किया। अल्लाह के नबी सल्लम ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बाद ये काम इतना फैल जाएगा, और अमूमन होता भी यही है कि जब लीडर जाते हैं तो काम ख़त्म होने लगता है, लेकिन याद रखिए बेहतरीन लीडर वो है कि उसके बाद काम उसके सामने होने से ज़्यादा अच्छा हो। तो चलिए 10 सेकंड तक हम सब अपना मुहासबा करते हैं, कोई अच्छी नीयत कि हमने कैसे इस पैगाम के अंदर अपना हिस्सा डालना है कि इंसानियत तक अल्लाह की बात जो है वो पहुंच सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तबलीग का मुकाम। यहाँ एक नुक्ता और मुकाम गौर के तलब है, और वो क्या कि बैतुल्ला में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के सवाब के बराबर है, जबकि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब एक रिवायत के मुताबिक 50,000 नमाजों के सवाब के बराबर है। यहाँ याद रखिए कि एक और रिवायत है जिसमें 1,000 नमाज का जिक्र भी आता है। उन्होंने इतने बड़े सवाब को तर्क करके तबलीग का सवाब हासिल किया। सहाबे कराम की ज़िंदगी का मुताला करने से पता चलता है कि वो अफजल को छोड़कर मफजूल को इख्तियार नहीं करते थे। काबिले गौर जुमला है, अफजल यानी जो सबसे आला है उसको छोड़ के मफजूल, मफ़ूल के वजन पे यानी जिससे ज़्यादा कोई और चीज़ अफजल हो उसको इख्तियार नहीं करते थे। अगर तबलीग दीन हक्का बैतुल्ला और मस्जिद नबी की नमाज़ों से अफजल ना होती तो सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना से बाहर ना निकलते। मालूम हुआ कि तबलीग इस्लाम बैतुल्ला और मस्जिद नबी की नमाज़ों से ज़्यादा दर्जा रखती है। सच है, यही बात अभी हमने की ना। किसको लगता है कि ये इतना बड़ा मिशन है और ये इतना बड़ा मनसब है? हम इस पे तो रोते हैं कि हाय हमने उम्रा करने जाना है, हमने 40 नमाज़ें मस्जिद नबी में पूरी करनी है, लेकिन पहले ये बताइए अपने करीब वालों के ऊपर हुज्जत तमाम की है कि नहीं की? हमने अभी यहाँ क्या किया है? मैं तो ख़ुद अपने साथ रहने वालों को यही कहती हूँ, कभी कहा जाए कि चलो हम यहाँ से मूव हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ कैसे, क्या हक अदा कर दिया इन जगहों का, क्या हमारे इर्द गिर्द के सारे घरानों में इस्लाम पहुँच चुका, क्या हमने वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए जो अल्लाह ने हमें दिए इन चीज़ों को पहचाने के? हम कहाँ हक रखते हैं? कल क़यामत के दिन यहाँ के लोग हमारे गिरेबान पकड़ लेंगे कि ये लोग इतने साल हमारे पास रह के गए, पैगाम नहीं दिया। जितना इंसान अल्लाह की दीन की बात अच्छे माहौल में बैठ के कर सकता है उतना ही याद रखे कि फिर उसका सवाल भी सख्त होगा। सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, फिर तुम नेमतों के बारे में पूछे जाओगे। एक एक नेमत को सामने रखते हुए देखिए कि ये अल्लाह की दीवी नेमतें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, शैतान के पैगाम को कि या रब के पैगाम को आम करते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं कि बाज़ लोग तबलीग करते हैं, ना तबलीगी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और ना उलमा और मुबल्लिगीन का साथ देते हैं, बस वो अपनी तिलावत और अपनी इबादत और तस्बीह ख्वानी में मुनहमिक रहते हैं। वो गौर करें कि वो अपना किस कदर नुकसान कर रहे हैं। यानी ये हिस्सा तो मैं चाहूँगी कि आप सब हाईलाइट कर लें कि कैसे नमाज़ों को छोड़ के वहाँ की वो बाहर निकले, उनको भी पता था कि हमारा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में कितनी हिरस थी उनको कि नमाज मस्जिद में जाके पढ़ें, बैतुल्ला में जाके पढ़ें, लेकिन उस वक़्त उनको मालूम था ये हमारे सीखने का दौर है, वहाँ रहे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में किसी ने खुद ही मुँह उठा के दूसरी तरफ जाना नहीं शुरू कर दिया कि चलो अब आप यहाँ बैठे हैं हम आपको नहीं पूछते, हम भी जाके कहीं एक कमरा बना के बैठ जाते हैं, हम भी कहीं जाके एक इदारा खोल लेते हैं, हम भी कहीं जाके एक मस्जिद बना के बैठ जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो एक तरीके के मुताबिक काम करने वाले लोग थे, उन्होंने पहले सीखा फिर दूसरों को दिया। हम दूसरों की खैर ख्वाही ले कर बैठ जाते हैं और हम अपने खैर ख्वाह नहीं होते। बाज़ लोगों को दीन की तरफ बुलाएं तो वो कहते हैं नहीं इस वक्त हमारे वजीफे का वक्त है। बस लोगों को कहा जाए क्लास में सीखिए तो कहते हैं नहीं हम एक क्लास लेते हैं, कौन पढ़ाता है वहाँ, खुद ही मिलजुल के पढ़ लेते हैं। मुझे इतनी हैरत होती है लोगों की ये बातें सुन के, मैं कहती हूँ अच्छा जो पढ़ाती हैं उन्होंने पढ़ा हुआ, कहती नहीं। यानी कितनी हैरत की बात है, आप कच्चा पक्का इल्म दूसरों को देंगे, आपको हिकमत नहीं मालूम, आपको तरीका नहीं मालूम, आप कैसे लोगों को दीन की बात देंगे? याद रखिए कि वो दरख्त के साथ जो पके हुए फल होते हैं वो मीठे होते हैं, पूरा वक्त फल के साथ रख के सर रखते हैं तो अपना मिठास और अपना असर लाते हैं, लेकिन वो फल जो कच्चे गिर जाते हैं ना, जितनी मर्ज़ी उसको पैल डाल लें, जितनी मर्ज़ी उसको चीज़ों में पेटियों में बंद कर दें, वो मिठास नहीं आती। सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लम से पूरा रस लिया, पूरा हक दिया, एक एक काम में महारत हासिल की, और फिर जब ज़रूरत पड़ी जहाँ ज़रूरत पड़ी वो निकले। हर एक को अल्लाह मौके देता है, लेकिन वक्त से पहले लिए हुए मौके फिर बाज़ दफ़ा इंसान को सारी ज़िंदगी दूसरों के सामने शर्मिंदा करते हैं। हकीकत यह है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग ना फरमाते, तबलीग की फजीलत बयान ना करते, सहाबे कराम को तबलीग की तरगीब ना देते, तो आज दीन इनका होता, यानी ख़त्म हो चुका होता, दिखता भी ना, इसके आसार तक नज़र ना आते। आज ये जो मसाजिद आबाद हैं, दीन के चर्चे हैं, इस्लाम के तस्करे हैं, सीरत तैयबा का बयान है, कुरान करीम की नशर व इशात है, ये सब चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और तबलीग की तरगीब ही का नतीजा है, यानी रग़बत जो आपने दिलाई लोगों को। और अगर आप इस कदर रग़बत ना दिलाते तो आज तबलीग और दावत का ये सिलसिला ना होता और इस्लाम बढ़ता फलता और फूलता हुआ दिखाई ना देता। तो ये है वो बात कि जिसकी इस वक्त हम सबको ज़रूरत है कि हमने भी इस काम की अहमियत को समझना है। हर काम इंसान खुद नहीं कर सकता, तो जो कर सकता है वो करके उसमें हिस्सा डाल सकता है। आप देखिए कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को पकड़ के जन्नत में दाखिल होंगे, और आपको मालूम है कि बाज़ रिवायतों में आता है कि सबसे पहले उनके कदम आगे जाएंगे। अब बिलाल ने क्या किया? जो कर सकते थे वही किया। उनकी दीवी अजाने दूसरों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के काम आ गई, मुकाम मिल गया ना। अल्लाह के नबी सल्लम के साथ रहे, अल्लाह ने उनको कैसी इज्जत दे दी कि आपने दुनिया में रहते हुए उनकी कदमों की चाप जो थी वो जन्नत में सुन ली, और आपने मेराज के मौके पे आपको आपका मुकाम दिखाया गया। तो अभी तक जितनी भी बात हमने देखी, इस सब का खुलासा यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन क्या था? अपने रब के पैगाम को आम करना, अल्लाह की बात को इंसानियत तक पहुंचाना। इसके लिए आपने अपने और गैर का फ़र्क नहीं किया, रिश्तेदारी और गैर रिश्तेदारी का फ़र्क नहीं किया, अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं किया, काले और गोरे का फ़र्क नहीं किया। जहाँ जिस मौके पे ज़रूरत थी, हिकमत के साथ देखा और वहाँ बात की। इंशाल्लाह इसके अगले हिस्से में चैप्टर के हम देखेंगे कि वो हिकमतें क्या थीं, क्यों अल्लाह के नबी सल्लम बात करते थे और इस्लाम फैलता था, और आज हम जितनी इस्लाम की दावत आम हो रही है उतना ही दीन कमज़ोर होता दिखता है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम अगले अगली नशिस्त में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस काम को करना और सुनना और कहना आसान करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।